مثلا ایک آدمی نے یہ کہا کہ خدا کی قسم میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا ایک آدمی نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم میں فلاں کو قتل کروں گا اللہ کی قسم میں تمہیں طلاق دے دوں گا بیوی کو کہا اور پھر جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو طلاق تو نہیں دی اس نے کسی نے سمجھایا تو جایا اور وہ قتل نہیں کر سکا یا اس کی نیت اور ارادہ بدل گیا تو یہ جو اس نے گناہ کی قسم کھائی تھی اگرچہ یہ گناہ پر ہے لیکن قسم توڑی نا جب قسم ٹوٹی ہے تو اب اس کو کفارہ دینا پڑے گا یا تو طلاق دے دیتا اور قتل کر دیتا تو قسم پوری ہوتی ہوا نہیں اس کی بہت سی وجہ ہو سکتی ہیں اور وہ کرنا جائز بھی نہیں تھا یہ قسم اتنی پاک چیز ہے کوئی آدمی گناہ کی قسم کھا لے تو اسے پورا تو نہیں کرنا لیکن جب نہیں پورا کرے گا وہ ٹوٹے گی تو اس کے بعد اسے کفارہ دینا ہے اور قسم کا کفارہ تین چیزیں ہیں ایک چیز ہمارے زمانے میں نہیں ہے اور وہ ہے غلام کا آزاد کرنا اور باقی دوسری چیز یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے دو وقت اتنے پیسے دے دے کہ 10 مسکین صبح و شام کا کھانا کھائیں یہ چیز ہے اور تیسری چیز اس کے بعد اسی میں یہ ہے کہ وہ کپڑے دے دے 10 مسکینوں کے کپڑے سلوا دے یا انہیں کپڑے دے دے نہ بھی سلوائے تو انہیں کپڑا دے دے ایسا کپڑا جو 3 مہینے تک پہنا جا سکے 3 مہینے سے پہلے کٹ نہ جائے ختم نہ ہو جائے تو کم سے کم وہ 3 مہینے گزارے اور تیسرا چوتھا درجہ پھر ختم گئی ہے کہ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں نہ غلام ہے اور نہ پیسے ہیں کہ مسکینوں کو کھانا کھلائے یا کپڑا دے تو پھر کوئی انسان 3 روزے رکھے مسلسل تب جا کر قسم کا کفارہ ادا ہوتا ہے حالانکہ اس نے قسم گناہ کی کھائی تھی اور قسم اسے توڑنی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ تم نے جب کوئی آدمی قسم کھا لے کسی چیز کی اور پھر وہ دیکھے کہ قسم کے توڑنے میں خیر ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی قسم توڑ دے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے اور وہ کام کرے جس کام میں ہے کہ یہ حکم ہوا کہ آدمی اللہ کا نام اللہ کی قسم اللہ کو گواہ بنانا بہت بڑی چیز اب آدمی سے پوچھا گیا کہ یہ جملہ تم نے کہا ہے اور اس پہ دونوں حکم لگ سکتے ہیں آپ کی بیوی کو طلاق ہوئی تھی اور نہیں دی ہوئی اس کا فیصلہ تو آپ کی قسم کر سکتی ہے جھوٹی قسم کھا لی اور اس کی نیت طلاق کی تھی ساری زندگی بیوی کے ساتھ گناہ میں وہ ملوث رہے گا بیوی پہ کچھ نہیں ہے اس لیے کہ شوہر نے قسم اٹھا لی اس نے اعتبار کر لیا اور اگر اس نے سچی قسم اٹھا لی تو پھر اللہ کے ہاں کا معاملہ ٹھیک ہے اس کی بیوی رہے گی تو قسم تب جو ہے کہ اندر کی نیت کو ظاہر کرتی ہے اس لیے جو جرور کا معاملہ ہے وہ اندر کا ہے اللہ ہی اسے جانتا ہے لیکن ایک چیز ہے کہ خدا کا علم حاصل کرنا خدا تک پہنچنے کی راہ اختیار کرنا اور وجہ سے نماز ہے روزہ ہے یہ عبادات ہیں جو ہم کرتے ہیں اور ایک یہ ہے کہ اللہ کی اس سے بڑھ کر آدمی پہچان حاصل کرے جان اور پہچان میں فرق ہم بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں کہ اس محلے میں رہتا ہے یہ نمازی ہے یہ فلاں مسجد میں آتا جاتا ہے فلاں جگہ اس کی دکان ہے اور پہچانتے تھوڑے لوگوں کو ہیں کہ مزید تعارف ہو اس کا نام کیا ہے فیملی کون سی ہے کرتا کیا ہے اور بہت سی چیزیں جو جاننی پڑتی ہیں یہ اللہ کی کا علم ایک الگ چیز ہے اور اللہ کی پہچان ایک الگ چیز ہے کہ انسان اللہ کی پہچان پیدا کرے اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ وہ تعلق ہمیشہ کے لیے قائم رہے اور روح میں اللہ کی یاد بس جائے اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا میں خدا کو یاد کرتا ہوں تو کسی نے کہا کہ حضرت کتنا ذکر آپ روزانہ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا 1,00,000 مرتبہ خدا کی تسبیح پڑھتا ہوں یعنی سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر کوئی بھی چیز انہوں نے کہا 1,00,000 مرتبہ پڑھتا ہوں سوائے اس کے انگلیوں میں کہ جتنے میں غلطی ہو جائے تو 1,00,000 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میں روزانہ 12,000 مرتبہ اللہ کو یاد کرتا ہوں 12,000 مرتبہ ذکر کرتا ہوں اور فرماتے تھے کہ ہمارے زمانے میں اگر قتل ہو جائے तो उनकी दियत 12000 रुपए है तो मैं 12000 का खुदा को याद करता हूं रोजाना कि मैंने अपनी जान पे जुल्म किया है मैं रोजाना एक खून का पैसा एक खून के बकदर जिक्र करके अल्लाह के यहां जमा करा देता हूं कि वो अल्लाह रब्बी अल्लाह कहते मैंने अपनी जान पे जुल्म किया है गुनाह करता रहता हूं अब ये सारी चीजें जो है कुछ पे जिक्र ये इसीलिए थी कि रूह पाक اور روح کو ایسا تذکیہ ملے جس کے ذریعے اللہ کی طرف سے جو انوار اور برکات آتی ہیں ان انوار اور برکات کو انسان کی روح جذب کر سکے اور روح سے محل دل ہے اسی لیے جو لوگ جاتے تھے حج اور عمرے پر بھی اسی وجہ سے جاتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتے رہتے تھے اگرچہ قال اشانو تو یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے لیکن خاص قرب کی جو نسبت ہو جاتی ہے اس اعتبار سے محمد ابن منقدر رحمت اللہ علیہ بڑے تابعین میں سے تھے حضرت منقدر رحمت اللہ علیہ خود بہت بڑے تابعین تھے اور محمد ابن منقدر یہ ان کے بیٹے ہیں غالباً تبع تابعین میں سے ہیں تو منقدر رحمت اللہ علیہ اپنے بچوں کو حج پہ لے جاتے تھے عمرے پہ لے جاتے تھے کسی نے کہا آپ اپنے بیٹوں کو کیوں لے جاتے ہیں تو کہنے لگے اللہ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں کیا پتا خدا کا کو قبول کر لے تو پیش کرتا رہتا ہوں کہ میرے بچوں کو آپ اللہ ان بچوں کو قبول فرما لیں تو یہ اسی لیے تھی ساری محنت کہ انسان کی روح تازہ رہے اور روح میں اللہ کی یاد رہے اور روح اتنی چوکنی رہے کہ انسان کے درمیان اور اللہ کے درمیان جو معصیت اور گناہ کا تعلق بنتا ہے اس کو ہو اسی لیے تھی اللہ مغفر لنا من خشیتک ما قبول به بیننا و بین معاصیک اے رب مجھے اپنی اتنی اللہ اے پروردگار اپنی اتنا خوف نصیب فرما دے جو میرے درمیان اور تیرے درمیان ہے اللہ آڑ بن جائے یعنی اتنا خوف خدا کا اتنا روب ہو کہ اس کے بعد میں اللہ کی نافرمانی نہ کر سکوں بہت سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعلق انسان کا قائم رہتا ہے اور سب سے بڑی چیز خدا کی یاد ہے اللہ کا ذکر ہے جتنا انسان خدا کو یاد کرتا رہتا ہے خدا کا ذکر کرتا رہتا ہے اتنا ہی روح اجلی ہوتی رہتی ہے روح اتنی ہی پاک رہتی ہے کیونکہ اللہ کی یاد بار 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 روح میں جب آتی ہے تو حتیٰ کہ آدمی سو بھی جاتا ہے تو بھی اس کی روح اللہ کو یاد کرتی رہتی ہے سوتے میں بھی خدا کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور انسان تھوڑا کرتا ہے محنت کرتا ہے دن کو اور رات کو اس کی کمائی ہے کہ وہ سو گیا اس کے باوجود روح میں خدا کی یاد آ گئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بے تابعین تبع تابعین یہ سارے حضرات کثرت سے خدا کو یاد کرتے تھے عصر کی نماز کے بعد مغرب تک مسجد میں بیٹھے رہتے تھے اور انہوں نے گویا اپنی زندگیوں میں عصر سے مغرب تک کا وقت اللہ کے لیے رکھ لیا تھا اور کثرت سے خدا کو یاد کرتے تھے تابعین کہتے ہیں مسجدوں میں داخل ہوتے تھے سیدنا عمر رضی اللہ کے زمانے میں تو ایسی آواز آتی تھی جیسے مکھیاں بن بن آتی ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ آہستہ 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 خدا کی یاد اللہ کے ذکر میں لگے رہے اللہ کی یاد یہ روح کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے اتنا ذکر کرے اللہ اتنی یاد ہونی چاہیے کہ روح اللہ کی ذات بن جائے اللہ کو یاد کرے اتنی روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ام المؤمنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کان یذکر اللہ وہ اللہ کو یاد کرتے تھے علی کل احیان ہر وقت خدا کو یاد کرتے رہتے تھے ہر وقت خدا کی یاد جو ہے یہ دراصل روح کی یاد ہے کہ روح میں اللہ کی یاد رچ بس گئی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ سب کے سب آ کے خدا کی یاد پیدا کر نماز وہ اللہ کی یاد اسی لیے پھر سارے طرح سے سلام کرنا آپ کے پھر صلاح کے ذکری میری یاد کے لیے نماز قائم کیجیے حج کو آپ دیکھ لیں وہاں اللہ کہتے ہیں کہ مینا میں جاؤ تو وہاں پر جو مینا میں رمی ہے رمی کے بعد تم فارغ ہو اللہ نے کہا کہ فذکر اللہ اللہ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کرو کہ جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو اس سے بڑھ کر خدا کو یاد کرو روزہ ہے اس میں بھی یہی ہے راستہ تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ ہر چیز میں اللہ کی یاد ہے کیونکہ اللہ کی یاد جب مسلسل رہتی ہے تو روح کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے शैतान पर सबसे ज्यादा गिरा ही गुजरता है और वो चाहता है कि उनको गफलत में मुब्तला कर दे। असल जुर्म इंसान का गफलत है अल्लाह से, अल्लाह की बातों से, अल्लाह के साथ ताल्लुक से। ये गफलत जिस दिन दूर हो जाती है उस दिन काम कर जाता है। अल्लाह ताला की तरफ से तजल्लियात पड़ती हैं, खुदा की तरफ से फैसले होते हैं, खुदा की तरफ से हर दिन और रात में एक घड़ी ऐसी आती है जिसमें दुआ की कबूलियत होती है। अल्लाह देखता है कि मेरे बंदा मुझसे क्या मांग रहा है। ये सब कुछ खुदा की याद, और जब हकीकत में खुदा को याद करते थे उनकी नजर अल्लाह की बेनियाजी पर चली जाती थी तो फिर परेशानी होती थी, रो देते थे। इसलिए पूरी जिंदगी या तो वो बेइत्मीनानी है कि अल्लाह क्या पहुंच के क्या होगा, या हैरत है कि एक मुकाम आदमी पर खुलता है और उसमें हैरान होता है, जो उससे आगे चलता है उससे हैरान होता है। जितना जितना फिक्र अल्लाह के बारे में सोच इंसान की बढ़ती है सिवाय हैरत के कुछ नहीं मिलता। हैरत दर हैरत में मुबतला हो जाता है कि अच्छा अल्लाह की शान ये भी है, अल्लाह की शान ये भी है। हज़रत सुफयान सौरी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े आदमी थे, हदीस शरीफ की अक्सर किताबों में सुफयान रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र आया है, तो रोते रहते थे। किसी ने उनसे पूछा कि क्या वजह है रोने की, तो कहने लगे वो जो तकदीर है ना उसमें मेरे मुकद्दर क्या लिखा गया है कि ये आदमी कुफर पे मरेगा या ईमान पे मरेगा, शफी हूँ या कईद हूँ, अल्लाह ने क्या तहदीर फरमाया है, तो इसको वो क्या हुक्म दिया है। इस वजह से रोता हूँ कि आखिरत आखिरी लम्हा जो है इसका क्या बने। तो रूह का जिक्र, रूह के साथ अल्लाह का ताल्लुक इस पे जमाना और जगह से नहीं करती। एक आदमी मुमकिन है यहां से 10,000 मील के फासले पर है और वो आदमी अल्लाह को याद करता है, उसकी दुआ और तवज्जोहात में कोई आदमी आ जाए उसके जिक्र का असर वहां तक पहुंचता है, उसकी रूह की बरकतें वहां तक पहुंचती हैं। कि काफी आज से 1,000 साल पहले खत्म हो गया, खत्म कर दिया लोगों ने, लेकिन उसकी रूह को जो वका हासिल है, मुमकिन है कि 1,000 साल बाद आने वाला बच्चा उसके असरात को महसूस करे। सूर्या के यहाँ तो ये इतनी कसरत से चीजें पाई जाती हैं, इतनी कसरत से ये सारे लोग झूठ नहीं बोलते थे, इनको ये कहा भी नहीं जा सकता कि सारे झूठे माद अल्लाह झूठ पे जमा हो गए थे। अल्लाह पर झूठ बोलना वो है बेबस्ती पैदा कर देता है, तो चीजें आगे तो चलती है। इसलिए जमानों मकान की कहती है, इसीलिए सूफिया जो इस बात के कायल हुए हैं कि अल्लाह अल्लाह की कबूल से फैज हासिल होता है, उसकी भी असल वजह यही है। ये नहीं है कि हर आदमी को कह दे कि कब्रों पर जाकर बैठो और तुम वहां से कोई फैज हासिल करने लगो, उसके भी कुछ तरीके हैं। लेकिन जो सूफिया इसके जिसका इसके तज़किरा बार बार करते हैं, वजह उसकी ये है कि जो साहिब दिल होता है जिसकी भी तस्वीर हुई कहीं भी हुई रूह का ताल्लुक इर्तिबात ऐसा है कि अल्लाह ताला आलम अरबाब से इस इंसान के साथ कोई ना कोई ताल्लुक पैदा कर देते हैं, फिर वहां से वो बरकत आती है और इस इंसान पर नाजिल होती है। इस इंसान को बाकायदा बहुत सी चीजें महसूस होती हैं और वो सब कुछ ऐसा बारीक सिलसिला है कि उस इंसान की अकल नहीं बाजू का तस्दीक करती। उसकी बड़ी मोटी सी एक मिसाल ख्वाब है, इंसान ख्वाब में देखता है किसी ने आके से कुछ कह दिया और बाद में बात हो गई, तो वो क्या चीज थी। अल्लाह ताला ने या तो ख्वाब किसी फरिश्ते को भेज दिया, अब फरिश्ता उसको उस सूरत में नजर आया जो सूरत इंसान को अच्छी लगती। इसलिए अल्लाह ताला मोमिन को तकलीफ नहीं देता। आदमी देखता है ख्वाब में कि फलां शख्स आया उसने ये कह दिया, अब फलां शख्स जो आया उसको तो वफात को भी कई साल हो गए, या तो उसकी रूह आई उस ख्वाब में और या फिर फरिश्ते उसकी सूरत और रूह बात कराए और उन्होंने आपके उसे खुशखबरी दी। अब ये यहाँ से गुमराही भी शुरू हो जाती है। तो ये समझता है कि उन लोगों को मेरे सारे आमाल का इल्म है, इसकी कोई दलील नहीं है कि उन्हें सारी हादसों का इल्म हो, मुमकिन है कि अल्लाह का कोई फरिश्ता आ गया हो या ज्यादा ज्यादा उनकी रूह आ गई हो और खुदा ने इजाजत दे दी हो। जब तक कतन फैसला ना हो जाए हम उस वक्त तक अकीदा कैसे अपना सकते हैं। इसलिए अकीदे का बिगाड़ भी यहाँ शुरू हो जाता है। लेकिन असलन औलिया अल्लाह कब्रों से फैज होना, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ने उसका इकरार भी करते हैं, कई चीजें लिखी हैं और शाह साहब रहमतुल्लाह ने तो पूरी किताब इस मौजू पे लिख दी है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारका के साथ उनका कैसे रक्त जबरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पे कैसे غالب आ गई उस रूह ने कैसे आके शादा रहमतुल्लाह के तहत बोझ लिया मुझे यहां तक कि मेरे सारी जिस्म पे सब जगह तारी हो गई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह और उससे मेरे दिल में उन्होंने ये डाला क्या ये बात है ये बात है ये बात है शादा रहमतुल्लाह की जिम्मेदारी गई बहुत बड़ी बात निकाली गई और कहा आप मेरी उम्मत पे ऐसा दौर आ रहा है जिसमें हदीस और फिका को तस्दीक देनी हो फिके में कायदे तुम बयान करते हो और हदीस की तरफ नहीं जाते तो अब ऐसा दौर आ रहा है जिसमें हदीस और फिका का तस्दीक देनी होगी हिंदुस्तान में फिकही जमूद का ये हाल था कि किसी शख्स के लिए मुमकिन नहीं था कि वो बात करे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की लोग कहते थे मसला बयान करो उनके नाम से बयान करो यहां तक कि तशहुद में इशारा करना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के नमाज में उंगली उठाना ये अफगानिस्तान के प्रधान ही तोड़ देते थे कहते थे ये कहां आया नमाज में तुम सुकून है और आदमी अगर गौर करे तो वो साहिब मसद से साबित है इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह साहब इमाम मुजीबा रहमतुल्लाह साहब से इतने ज्यादा तलब क्या था ये उंगली तोड़ देते थे ऐसे ऐसे लोग थे जो चिताई पर सब पर कालीन पर नमाज नहीं पढ़ने देते थे और कहते थे ये बिदअत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जमीन पे नमाज पढ़ते थे ये आदम जमीन पे नमाज पढ़ा करो इन चीजों पर नमाज पढ़ना बिदअत है ये एक फिकही जमूद तारी हो गया था कि किसी हदीस को नहीं सुनना कुछ नहीं सुनना शाहुल मक्साब मौजिद देवी रहमतुल्लाह अलैह हदीस को लाए लेकिन अस्बाब और वजूह ऐसे थे कि हदीस ज्यादा भी फैल नहीं सकी लेकिन शाहुलुल्लाह मौजिद देवी रहमतुल्लाह जब हरमैन शरीफ में गए हैं तो उन्होंने वहां से हदीस पढ़ी शेख साहिब गुजरी रहमतुल्लाह से और ताहिर रहमतुल्लाह अलैह ने जब सनद दी शाहब रहमतुल्लाह को हदीस पढ़ाने के बाद उन्होंने लिखा शाहुलुल्लाह रहमतुल्लाह जब हदीस पढ़ते थे उस्ताद से ऐसे ऐसे सवाल करते थे कि उस्ताद हैरान होते थे कि ये इसके दिमाग में क्या ये क्या किस सवाल इसके जहन में आते हैं तो उन्होंने शाहुलुल्लाह रहमतुल्लाह की सनद में लिखा कि अगर ये जाहिर में सही बुखारी और हदीस पढ़ के फलां फलां किताबें अहमद ने शाहुलुल्लाह रहमतुल्लाह का नाम भी अहमद है ना अहमद ने अगर ये मुझसे सनद ली है लेकिन हकीकत में मैंने इससे इससे हदीस के अल्फाज की सनद ली है लेकिन हकीकत में मैंने इससे हदीस की मानी की सनद ली है कि जब ये पूछता था तो फिर मुझे पता चलता था कि अच्छा इस हदीस से ये मतलब भी निकल सकता है ये मतलब भी निकल सकता है तो शाह साहब रहमतुल्लाह को बताया गया कि आगे का दौर अब ऐसा आ जाएगा अब आगे का दौर कैसा आया अहले हदीस हजरात का हिंदुस्तान में नफूज हुआ हदीस की किताबें फैली शाहुलुल्लाह रहमतुल्लाह के अपने शागिर्दों ने हदीस शरीफ की इशात शुरू की हदीस मुताबिक बातें शुरू हुई होते होते अहले हदीस हजरात की मसाजिद बनी ये सब चीजें हुई तो हदीस और फिका की तस्दीक का दौर आया कि हदीस भी देखनी है फिका भी देखनी है और गुस्सा पे नजर पैदा करती है वो फिकही जमूद जो तारी हो गया था उस फिकही जमूद को खत्म करना है इसीलिए कहा उस फिकही जमूद के बाद के मुसाफिरीन बड़ी सख्त उन्होंने मुखालफत की और हदीस शरीफ को उन्होंने लाए हदीस को देखा और ये सारी चीजें तो ये शाहुलुल्लाह रहमतुल्लाह का कहना ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारका उसने मुझे ये चीजें बताई अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका दुनिया से तशरीफ ले जाना कब हुआ ये बात कब हुई सहाबाए किराम के नाम के ऊपर ये कैसे वाकयात मिल जाएंगे कि किसी की रूह ने आके किसी को खबर दे दी ये रूह का तज़किया है और रूह की सबसे बड़ी बीमारी असल में दुनिया की मौत है बस ये मोहब्बत दिल से खत्म करे जरूरत एक अलग चीज जरूरत इस बात की है कि हजार रुपए दर्द का कपड़ा पहने कोई परवाह नहीं और जरूरत इस बात की है कि जमीन पे बैठ जाए कोई परवाह नहीं दुनिया की मोहब्बत दिल से खत्म होनी चाहिए और मोहब्बत सब खत्म होती है जब दीन और दुनिया में टकराव पैदा होता है और आदमी कहता है नहीं अल्लाह को मैं इसको तरजीह देनी जब अल्लाह को तरजीह देने लगता है तो फिर अल्लाह ताला इसे भी तरजीह देता है हर आदमी अपने दिल में सोचे कि मेरे दिल में अल्लाह का क्या मुकाम है जितनी मेरे दिल में अल्लाह की कदर है ना उतनी अल्लाह के यहां मेरी भी कदर है जितना मैं खुदा को वजन देता हूं अपनी सारी जिंदगी में उसके अहकामात को उतना ही अल्लाह मेरे बारे में भी वजन देता है सीधी सी बात है, सीधा सा रसूल है, अल्लाह की नाफरमानी के साथ आदमी ये चाहे शुरू कर दिया उतारे, बड़ी मुश्किल बात है। इल्ला ये कि खुदा का फजल हो जाए तो अलग बात है, वगरना रूह सबसे ज्यादा तबाह चीज दुनिया की मोहब्बत है, ओहदे की मोहब्बत, पैसे की मोहब्बत, वो शख्सियात जिनसे इंसान का बजाहिर नफा और नुकसान वाबस्ता है, उनकी परस्ती अपने आप को बड़ी शख्सियत की नजरों में बड़ा साबित करने की जद्दोजहद, ये सब मर्द है। एक आदमी बड़ा है, सदर है, वजीर आजम है, पता नहीं कल को उसको वजारत मिलनी है या नहीं मिलनी। एक आदमी सारे अस्बाब और वसाइल झोंक देता है उसके पीछे कि किसी तरह उसकी निगाह में मैं बड़ा बन जाऊं, टिकट मिल जाए, कोई असेंबली की चीज मिल जाए, कुछ बन जाए मिल जाए, तो कोई इससे पूछे कि जो तुम हजारों लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, सैकड़ों आदमियों को लेके जा रहे हो, उसके बाद मकसद क्या है? मकसद सिर्फ यह है कि लोग मुझे अच्छा जानने लगे, कल वो मेरी वाहवा हो जाए, असेंबली की चीज मिल जाए, गोदा मिल जाए। ये दुनिया नहीं है तो और क्या? जो हक अल्लाह का था उसने इंसानों को अल्लाह का हक दे दिया। मार हजरत वफात से पहले उन्होंने कहा कि अंगूर मिल जाए तो क्या अच्छा हो, तो उनके अहलिया ने किसी को अंगूर लेने भेज दिया। होली के वापिस आया जब अंगूर उनका नौकर, तो इतने में एक आदमी की आवाज आई, उससे कहा कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। अब्दुल्लाह इब्न रज़ी अल्लाह अन्हु ने नौकर को कहा अंगूर से दे दो। थोड़ी देर बाद फिर फरमाया कि जी चाहता है अंगूर मिल जाए, फिर दूसरी मरतबा ऐसे हुआ कोई आ गया, फिर तीसरी मरतबा ऐसे हुआ। तो जब तीसरी मरतबा उन्होंने अंगूर दिए तो उनकी अहलिया ने जाकर उस फकीर के दिरहम एक दिरहम उसके हाथ पर रखा और कहने लगी मुझे भेज दो ये पैसे ले लो, और कहा अगर मैंने अब तुम्हें देखा ना तो फिर तुम्हारी खैर है, तुम इन्हें अंगूर भी नहीं खाने देते। तो अब्दुल्लाह इब्न रज़ी अल्लाह अन्हु के पास दे गए और कहा हजरत आप खा लें। वो क्या वजह थी? वो बार बार सदा आ रही थी ना, वो सवाल वो अल्लाह के लिए। इब्न रज़ी अल्लाह अन्हु बाजार गए, बहुत खूबसूरत जो चुनी हुई होगी जमाने में अपने हुस्न के एतबार से एक बांदी खरीदी, उसे घर लाए और बच्चों को कहा देखो मैंने बांदी खरीदी है, कितनी खूबसूरत लड़की है। उन्होंने कहा वाकई ये बाप का इंतखाब है। कहने के जाओ अल्लाह के लिए आजाद किए। बच्चों ने कहा ये क्या आपने किया? कहने के मैंने जब आयत पढ़ी किलन तनाल बिन रहता तुम पे कुल निम्मात और गुण, अल्लाह ने कहा तुम हकीकत में नेकी के कमाल तक उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक अल्लाह की राह में वो चीज ना खर्च करो जिससे तुम्हें मोहब्बत है। तो मैंने सोचा मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है, फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे औरतों से ताल्लुक में बड़ी दिलचस्पी है, ख्वाहिश है की, तो मैं गया और सबसे खूबसूरत खरीद के बांधी अल्लाह के लिए आजाद कर दी, ताकि अल्लाह इस पे गवाह रहे कि मुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज थी मैंने अल्लाह की राह में दी। ये क्या चीज है? ये अल्लाह तक पहुंचने की जुस्तजू और जद्दोजहद है कि किसी तरह अल्लाह तक पहुंचा जाए, रूह को पाक किया जाए। सारी जिंदगी इसी काम में गुजरती है कि किसी तरह रूह को पाक करे। दुनिया की मोहब्बत फिर उसको आलूदा कर देती है, रूह परवास करना चाहती है, अल्लाह की तरफ चलना चाहती है, इंसान से मादे की तरफ खींचता है, गंदगी की तरफ खींचता है, फिर वो अपनी जान छुड़ा सकती है, फिर आदमी से ले आता है। ये कश्मकश रहती है यहाँ तक कि आदमी की रूह जब गालिब आ जाए, अल्लाह की याद गालिब आ जाए, अल्लाह का जिक्र गालिब आ जाए, तो फिर जाकर इस कश्मकश में कुछ आदमी जरा सा ढीली पड़ जाती है ये कश्मकश, और तू जो है वो इंसानी जिस्म पर गालिब आ जाती है, फिर खुदा की इताअत के तकाज़े कुछ पूरे होने लगते हैं।